पृष्ठ संख्या 190, अनामिका और परिमल। मित्र के प्रति या प्रगल्भ प्रेम अथवा और छवि एक तरह से अपने विरोधियों के उत्तर में लिखी गई कविताएं हैं। इनमें उपेक्षित के उन्नयन का भाव व्यक्त नहीं है, बल्कि अपने द्वारा अस्वीकृत छंद मुक्ति और नए काव्य के बचाव पक्ष में दलील पेश करने की मुद्रा है। मित्र के प्रति पुरानी काव्य परंपरा पर व्यंग्यपूर्ण प्रहार है और अपने तथाकथित नीरस छंद रहित भाव रहित अरर वरर को ही नई मोतियों की माला के रूप में सरस्वती के गले में पहनाने का जिक्र है। काव्य के जलते हुए मरुस्थल में इसे कवि ने अपने द्वारा बनाए गए नखलिस्तान की संज्ञा दी है। अंत में अपने निसंशय निडर निर्णय का स्वीकार भी है। नहीं तत्त अतः बंधु नहीं रक्ष रक्ष, कोई डर नहीं, इसीलिए सुरक्षा की कोई मांग भी नहीं है। प्रगल्भ। पृष्ठ संख्या 191। प्रेम में आह्वान है, प्रिय छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह, अर्ध विकच इस हृदय कमल में आ तू। फिर प्रेमिका के इस रूपक का कविता के अंत तक निर्वाह है। दान में ब्राह्मण श्रेष्ठ द्वारा भूखे मनुष्य की जगह राम भक्त हनुमानों को मालपुआ खिलाने का जिक्र है। यह कविता भी व्यंग्य और करुणा की मिलीजुली अद्भुत अभिव्यक्ति है, लेकिन संवेदनागत और विषय वस्तु की मुक्तता के बावजूद इनकी पूरी भाषिक संरचना छायावादी है। प्रगल्भ प्रेम का पूरा रूपक ही आभिजात्य से भरपूर है। इनमें छायावादी शब्द बंध घुसपैठ ही नहीं करते, बल्कि पूरी कविता पर हावी हैं। यही हाल मित्र के प्रति और दान कविताओं का भी है। तोड़ती पत्थर, वह किसान की नई बहू की आंखें, अथवा दीन विधवा, संध्या सुंदरी और कुछ हद तक भिक्षुक भी इस संस्कारशील शब्द गरिमा से पूर्णतया मुक्त नहीं है। अंतर यह है कि जहाँ प्रगल्भ प्रेम का सारा शब्द बंध छायावादी है और उनकी रूपात्मकता उसी आभिजात्य परंपरा से ग्रहित है, वहाँ इन कविताओं में संवेदना विषय और छंदगत मुक्ति पूरी तरह विद्यमान है और सिर्फ भाषिक स्तर पर उनमें पंक्तियों के बीच जगह जगह अभिजात शब्दबंध घुसपैठ करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ शब्द प्रयोग से लेकर उनकी ध्वनि लयात्मकता और कुछ दूर तक कथन भंगिमा सभी कुछ में छायावादी अभिजात संस्कार उभर कर सामने आ जाता है। जहाँ कहीं भी संवेदनागत नवीनता के अनुकूल शब्दबंध को ढालने की चेष्टा की गई है, वहीं एकाएक पंक्तियों के बीच से भाषा का अभिजात्य एक खिड़की खोलकर झांकने लगता है, जैसे कोई न छायादार पेड़ एक नया शब्दबंध है। लेकिन इसके बाद ही श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, यह पूरा बंध छायावादी संस्कारों की उपज है। यह तत्समता से अलग वह गली मोहल्ले और उस सड़क की भाषा नहीं है जहाँ वह औरत भरी दुपहरी में बैठी हुई गिट्टे तोड़ रही है। इस शब्द बंध से पत्थर तोड़ने वाली के अभिजात से लगने वाले सौंदर्य की सृष्टि होती है। उसका काला कलुटा, धूप तपा रंग और पत्थर तोड़ती हुई मुद्रा अधिक प्रकट नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा कि भाषिक संरचना का यह द्वैत संवेदनागत मुक्ति में भी कहीं कहीं दरार डालता है। इसी प्रकार आगे इस कविता में हथौड़े के साथ गुरु, भारी की जगह विशेषण का प्रयोग, या तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, या लीन होते कर्म में ये सारे शब्द बंध छायावादी हैं और गाढ़े के कुर्ते में चमकते हुए रेशमी पैबंद से लगते हैं, जो सौंदर्य को बढ़ाते नहीं, उसका खुरदुरापन भंग करते हैं। भाषिक संरचना का यह रूप कविता को एक पारंपरिक आभिजात्य का रंग अधिक देता है, उसे सामान्य बनाने में खलल पैदा करता है। विधवा या दीन। पृष्ठ संख्या 192। या संध्या सुंदरी की भाषा के इस द्वैत का शिकार है और इसीलिए उनकी संवेदनागत एकतनता कभी कभी खंडित होती हुई लगती है। उनके नएपन के सारे मिजाज पर, उनके खुलेपन पर गरिमा और गंभीरता की एक सभ्य परत पड़ जाती है। उनका मिजाज पूर्णतः उस तरह का नया या बिल्कुल अलग नहीं लगता जिस तरह कुकुरमुत्ता या नए पत्ते संग्रह की कविताओं का लगता है। विधवा, भिक्षुक या तोड़ती पत्थर की करुणा भी वह उफनती हुई करुणा है जो छायावादी या पारंपरिक कविता की अपनी विशेषता है। इन कविताओं को निराला जैसे अपनी छाती से चिपकाए हुए हैं। एक विशाल अश्वत्थ की तरह निराला का संपूर्ण व्यक्तित्व इन पर छाया हुआ है। साथ ही अपनी संवेदनागत और विषयगत मुक्ति के बावजूद विधवा, दीन या तुड़ती पत्थर के पात्रों में सहने की एक उच्च सहायता है, जैसे वह अपनी सहनशीलता में दुखी नहीं बल्कि गरिमा मंडित हो। एक वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी, शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी। दो सह जाते हो उत्पीड़न की क्रीड़ा सदा निरंकुश नग्न, और जगत की ओर ताक कर दुख हृदय का क्षोभ त्याग कर सह जाते हो। तीन ठहरो अरे, मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। चार देखा मुझे उस दृष्ट से जो मार खा रोई नहीं सजा सहज सितार। यह सहने की उच्च शयता, गरिमा या उफनती करुणा का यह अपार प्रसार, सारी संवेदनागत और विषयगत नवीनता के बावजूद इन कविताओं में हर जगह मिलता है। ये कविताएं करुणा अभिभूत अधिक कराती हैं, कुछ इस तरह की उनका नग्न यथार्थ ब्रैकेट में जो संभवतः कवि का अभिप्रेत है ब्रैकेट बंद, इस करुणा में ऊब चूब होता हुआ दिखाई देता है। पृष्ठ संख्या 193, नग्न यथार्थ की यही ठोस व्यंग्यपूर्ण परिणति आगे चलकर कुकुरमुत्ता और नए पत्ते संग्रह की कविताओं में परिलक्षित होती है। वहाँ उपेक्षित जनसामान्य द्वारा ना तो सहने की गरिमा के दर्शन होते हैं, ना ही निराला उन्हें अपनी छाती से चिपकाए हुए नजर आते हैं। लेकिन इन कविताओं में यह त्रुटि सिर्फ काव्य आभिजात्य से मुक्ति के संदर्भ में ही है, उनके विश्लेषण का एक दूसरा आधार भी हो सकता है, और उस आधार पर वह निराला की अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की कविताएं साबित होती हैं। भिक्षुक कविता का दृश्य बिंब किसी एक शब्द बंध में नियोजित नहीं है, बल्कि पूरा विवरण ही एक चित्र बिंब की सृष्टि करता है। यहाँ पर भी निराला इस विक्षुब्ध स्थिति को अपनी व्यक्तिगत से जोड़ देते हैं। दो टूक कलेजे के कर्ता में शायद अपने कलेजे के दो टूक करने की अभिव्यक्ति उतनी नहीं है जितनी दर्शक, भावक और संवेदनशील कवि के कलेजे के टुकड़े होने की। पेट पीठ मिलकर दोनों हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी छोली का फैलाता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं सेवै मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना हाथ दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। चाट रहे जूठे पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। इस पूरे विवरण की हर पंक्ति में ऐसे करुणा और भयावह बिंबों की सृष्टि कवि ने की है कि वह पाठक के सामने इस सामाजिक पतन का एक सजीव चित्र उपस्थित कर देते हैं। शायद इसके पूर्व किसी कवि ने भी इस स्थिति को कविता के योग्य नहीं समझा। इसमें पहले कभी भी जैसे कवित्व तो नहीं दिखाई दिया। इस सामाजिक विडंबना का अनुभव आज के भारतीय कवि को ना हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी संवेदना का अंग बनाने और उसे इस तरह सीधे साधे ढंग से एक मार्मिक पृष्ठ संख्या 194 अभिव्यक्ति में तब्दील करने की बात इसके पहले किसी भी कवि ने नहीं सोची। कला और संस्कृति और इतिहास के इस विडंबनापूर्ण नुक्ते पर इस व्यक्ति और उसके परिवार की पहचान पहली बार निराला ने की है, लेकिन फिर भी यहाँ उसके दैन्य और उसकी विवशता का चित्र ही अधिक है। उसके पेट सहलाते हुए या दया की भीख मांगते हुए हाथों को निराला यहाँ अपने एक परवर्ती बिंब की तरह नहीं ढालते। जिन्होंने ठोकरें खाई गरीबी में पड़े, उनके हजारों हाँ हजारों हाथ के उठते समर देखे। अभी उन्हें उन असहाय हाथों से उठते हुए समर दिखाई नहीं देते, लेकिन इस स्थिति के कारुणिक भयावह दैन्य का निराला को खूब एहसास है। वह सिर्फ उसकी असहायता का चित्रण करके एक नैराश्य की स्थिति में नहीं छोड़ देते, वह इस स्थिति के निदान के लिए समाजसेवियों, नेताओं या मसीहाओं का इंतजार नहीं करते। वह स्वयं अपने जीवन अमृत को लेकर सामने आते हैं और उसके दुख रूपी जहर को अपने अंदर खींच कर नीलकंठ बनने की घोषणा करते हैं, जिससे ये दैन्य असहायता और विवशता की मुद्रा में फैले हुए हाथ अभिमन्यु बनकर बड़े बड़े महारथियों से लोहा ले सकें और अन्याय तथा शोषण के इस चक्रव्यूह में घुसकर उसे नष्ट कर सकें। इसीलिए निराला उसे आश्वासन देते हैं, उसे अकेला नहीं छोड़ते। स्वयं कवि इस स्थिति के खिलाफ व्यक्तिगत रूप में प्रतिपक्ष में आ खड़ा होता है। भावना की उत्कट सच्चाई और आत्मनिर्णय की इसी महानता के कारण यह हिंदी साहित्य की एक अद्वितीय कविता है, और यही कारण है कि इसके प्रकाशित होते ही बड़े बड़े धुरंधर पुराणपंथी भी इसे बिना सराहे नहीं रह सके। इस कविता में अभी व्यंग्य की कटुमार नहीं आ पाई है जो बेला या नए पत्ते की कविताओं में विकसित हुई है। यहाँ निखालिस और उत्कट भावनात्मकता का असज्र प्रवाह है। इसीलिए मैंने कहा कि इन कविताओं को निराला अपनी छाती से चिपकाए हुए घूमते हैं। दृष्टिकोण, सच्चाई, आत्मनिर्णय और नैतिक मूल्यों का यही अंतर निराला को पंत से बहुत ऊंचे दर्जे का कवि साबित करता है। ऐसे ही जर्जर व्यक्ति के बारे में पंत की प्रतिक्रियाएं देखने लायक हैं, जहां निराला अपने जीवन के अमृत से उस जनसामान्य को सींच कर अभिमन्यु बनाने की घोषणा करते हैं, वहां पंत उस आदमी के सलाम करने पर जिस धरती पर वह बैठा है उससे पांव उठा लेने की बात सोचते हैं, और जाते जाते जैसे कभी पंत के संपूर्ण अंतर में वह अपनी काली नारकीय छाया छोड़ जाता है। पृष्ठ संख्या 195। बैठ टेक धरती पर माथा, वह सलाम करता है झुककर, उस धरती से पांव उठा लेने को जी करता है क्षण भर। भूखा है, पैसे पा, कुछ गुनगुना खड़ा हो जाता है वह घर, पिछले पैरों के बल उठ, जैसे कोई चल रहा जानवर, काली नारकीय छाया निज छोड़ गया वह मेरे भीतर। दृष्टि और विचारों का यह अंतर दो समकालीन कवियों में दृष्टव्य है। पंत अपने सारे सोच में एक बुर्जुआ लगते हैं, उनकी कारुणिक दया और घृणा ऊपर से चंद पैसों के साथ फेंकी गई है। वह उस धरती को भी अछूत समझ लेते हैं जिस पर माथा टेक कर वह सलाम करता है। वह मनुष्य नहीं, उनकी नज़रों में एक जानवर है। वह उसकी लंबी चौड़ी पुरानी काठी से थोड़ा सा मनोरंजन के स्तर पर आकर्षित होते हैं, लेकिन वह उनके अंदर करुणा और मनुष्यत्व की गहरी पीड़ा का संचार नहीं करता, बल्कि अपनी काली नारकीय छाया छोड़ जाता है। उनकी करुणा और दया में नफरत का जहर साफ मिला हुआ दिखाई देता है। पंत उसे रोकते नहीं, उसके दुख जहर को अपने अंदर खींचने की बात भी नहीं सोचते। वह उसमें शामिल नहीं होते, बल्कि उस आदमी का अस्तित्व उन्हें अपनी सुविधा में एक बाधा सा प्रतीत होता है, और वह चाहते हैं कि जल्द से जल्द वह उनके सामने से दफा हो जाए। जन साधारण के प्रति पंत का यह अमानवीय दृष्टिकोण दरअसल आश्चर्य में डाल देता है। इस कविता में न तो व्यंग्य का कोई धरातल है, न निश्चल मानवीय करुणा का। इसकी जगह नफरत का जहर पूरी कविता में व्याप्त है। इसी सामाजिक अधः पतन के प्रसंग को जब निराला ने फिर बेला की एक कविता में उठाया है, तो वहाँ पर कटु करारे व्यंग्य की तीखी अभिव्यक्ति दर्शनीय है। वहाँ निराला व्यक्तिगत रूप से अपने को भिखारी की पक्षधरता से हटा लेते हैं, वहाँ भी वह उतना ही असहाय है, लेकिन उसकी निष्कवच असहायता ही सबके लिए जैसे एक चुनौती बन गई है। वह स्वयं एक ऐसा सशक्त प्रतिपक्ष बन गया है कि समाज के सभी वर्ग अपनी समृद्ध, अपनी कला, अपने सौंदर्य को उसी की तुलना में देखने के आदी हो गए हैं। कलाकार उसके जर्जर ढांचे में पहाड़ का दर्शन करता है, कारीगर उसे घड़ी समझकर भगाने की बात करता है, कोई उसे जनता जनार्दन का रूप मानकर स्तुति का ढोंग करता है, स्त्रियां उसकी कुरूपता की तुलना में अपने सौंदर्य का पृष्ठ संख्या 196 अर्थ समझती हैं, और मुट्ठी भर हड्डी का यह नर राह पर पड़ा पड़ा निष्कवच उन्हीं लोगों से भीख मांगता है। यहाँ एक भयंकर और क्रूर व्यंग्य निराला ने पूरी कविता में विकसित किया है, यानी कि जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा है वह लोगों की अपनी समृद्धि, कला, नफरत और सौंदर्य को नापने जोखने का बटखरा बन गया है, यानी कि आदमी आदमी की नज़र में एक बटखरा हो जाए किसी भी समाज का, इससे भयानक अधःपतन और क्या हो सकता है। भीख मांगता है अब राह पर मुट्ठी भर हड्डी का यह नर, एक आंख शिक्षा की हेठी से देखने लगी उसे, अमेठी से कहा खुलकर छोटा भूधर, एक आंख तरुणी की जो अड़ी, कहा यहाँ नहीं कामना सड़ी, इससे मैं हूँ कितनी सुंदर। इसी तरह तोड़ती पत्थर में भी निराला ने जनसामान्य का प्रतिपक्ष वह आभिजात्य वातावरण प्रस्तुत किया है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। यह सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार भी उसी परंपरागत आभिजात्य का दिग्दर्शन कराने के लिए लाया गया जान पड़ता है। शायद शब्दबंध की यह पारंपरिकता जिससे हम सहमत हो चुके हैं और जिसे आभिजात्य की घुसपैठ कहा है, वह भी उस विरोधी पक्ष को चित्रित करने के लिए निराला ले आए हैं। एक संभावना यह हो सकती है कि उन्होंने अर्थ, स्थिति और चित्र को और अधिक गहरा बनाने के लिए विरोधी रंगों का इस्तेमाल किया हो। सड़क पर लू तड़प, गर्द गुबार और सामने उस ओर हरे भरे शाद्वल वृक्षों से युक्त अट्टालिका। लेकिन संघर्ष के इस पक्ष को आगे न खींचकर निराला उसे एक विवश दैन्य में ले जाकर छोड़ देते हैं। यहाँ पर किधन से भी वह आकर शामिल नहीं होते। उसमें एक अश्रुत पृष्ठ संख्या 197, स्वर झनकार और अद्वितीय संगीत की सृष्टि वे पाते हैं और मात्र एक मूक दर्शक की तरह परिस्थिति की इस विडम्बना को कविता के अंत में सहज ढंग से स्वीकार लेते हैं। लीन होते कर्म में जो कहा मैं तोड़ती पत्थर, कवि शायद इस सहज स्वीकार से यह भी संकेतित करना चाहता है कि तुम जी मेरे श्याम तन और बंधे हुए यौवन में अपरूप सौंदर्य आदितीय संगीत को देख सुन रहे हो। इसकी गुंजाइश यहाँ नहीं है, यह तुम्हारी कपोल कल्पना है। मेरी नियति तो इस लू भरी दोपहरी में पत्थर तोड़ना भर है। इस तरह इन कविताओं की भाषिक संरचना में जो आभिजात्य शब्दावली की घुसपैठ दिखाई पड़ती है या इनमें सहने की जो उच्च शयता और गरिमा अभिव्यक्त हुई है, वह कविता की मुक्ति के आवाहन को थोड़ा छिड़ भल्ले करती हो। एक दूसरे अर्थ में शायद कविता के अर्थ और महत्व को अधिक सघन बनाती है।